अभी ये बातें हुई कि मक्का वालों की एक और आजमाइश शुरू हो गई, और वो क्या कि हज का मौसम आ गया। और हज का सीज़न ऐसे ही था कि जैसे आप ये सोच लें कि आज के दौर में कोई कन्वेंशन हो जिसमें चारों तरफ से लोग जमा हो, ये वो मौका था कि मक्का में इधर उधर से हर तरफ से लोग आया करते थे। अब मक्का के जो बड़े बड़े ये सरदार थे उनको गम लग गया कि कल तक तो बात सिर्फ मक्का वालों में थी, हमने कहीं ना कहीं से छुपाई हुई थी, ढकी हुई थी, रखी हुई थी, लेकिन अब तो लोग बाहर से आएंगे। और बड़े बड़े कबीले थे, इनके मरासम थे, ख़ानदान थे, जैसे ताइफ बहुत अमीर इलाका था उस दौर में, वहाँ बड़े बड़े अमीर हुक्मरान रहते थे, उनके जो कबायली लोग थे, इनको गम क्या था कि अगर इनमें से किसी के कान में भिनक भी पड़ गई इसके बारे में, और उनमें से अगर कोई एक मुसलमान हो गया तो हमारी तो सारी मदद बंद हो जाएगी, करें क्या। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, जो बड़े बड़े इनके सरदार थे, और मीटिंग्स ये करते थे, उसका नाम था जगह का दारुल नदवा। एक जगह थी जैसे पार्लियामेंट हाउस कह लें, या एक जगह थी, वहाँ ये सारे बैठे और कहा कि सब मिलके एक राय पे जमा हो जाते हैं कि इस नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों को क्या कहना है। कोई एक जुमला सोचते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, गठजोड़ करने की कोशिश की कि जो भी नया बंदा आएगा ना तो हम कह देंगे कि ये मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ुबिल्लाह ये काहिन है। बस पहली जो ऑप्शन उन्होंने पेश की वो क्या थी कि ये तो काहिन है। इनमें एक शख्स था वलीद बिन मगीरा, उसका नाम था, बड़ा समझदार था, दौलतमंद भी था, सरदार भी था। लोगों ने जब कहा कि अच्छा चलो ऐसा करते हैं, हम एका कर लेते हैं इस बात पे कि लोगों को कहेंगे कि हमारे शहर में आजकल एक काहिन आया हुआ है, तो मुझसे बच के रहना। तो वलीद कहने लगा कि क्या भला लोगों ने काहिन नहीं देखे, इस शख्स में तो काहिनों वाली कोई बात ही नहीं है, उनके अंदर तो गुनगुनाहट होती है, वो क्या फे लगाते हैं, वो तुकबंदियाँ करते हैं, इसकी तो कोई बात नहीं, तो लिहाजा काहिन तो इसको नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा अच्छा चले ऐसा करते हैं कि हम सब इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि नऊज़ुबिल्ला सुम्मा नऊज़ुबिल्ला ये कह देंगे कि हमारे शहर में एक पागल आया हुआ है, जुनून जुनूनी है, कैरे क्रेजी है, हम सब यही कह देंगे ये पागल है, इसकी बात ना सुनना। फिर वलीद बोला कैसी बात करते हो, क्या भला लोगों ने पागल नहीं देखे, उनके दम घुटते हो, उनकी कैफियत होती, उल्टी सीधी वो हरकतें करते हैं, बहकी बहकी बातें करते हैं, ये शख्स तो ऐसा नहीं करता। कहा अच्छा चलो ये भी गई, चलो फिर ऐसा करते हैं कि हम सारे इस बात पे सोच लेते हैं कि इसके बारे में कहेंगे ये शायर है। यानी अब देखिए कि वही का असर और सच्चाई का तोड़ करने के लिए वो कितनी मुश्किलों में पड़ रहे हैं। कहा इसको कहते हैं ये शायर है, वलीद ने कहा कि ये तो शायर ही नहीं है, क्या बड़े बड़े शायरों के नाम लेके कहने लगा, और जो शायरी में जो तर्ज इस्तेमाल होते हैं वो सब नाम लेके कहने लगा कि इसकी बातों में तो शायरी वाली कोई बात ही नहीं है। लोगों ने कहा करें तो क्या करें। आप कहते हैं कि फिर इस मीटिंग के एंड पे जो डिसीजन हुआ वो क्या हुआ कि चलो ऐसा करते हैं कि सब एक जुमला याद कर लें, और वो क्या कि हर नए बाहर से आने वाले को कहना कि देखो हमारे शहर में आजकल एक जादूगर आया हुआ है और इसकी बातों में बड़ा असर है, जो इसकी बात सुनता है ना बस वो इसके हाथों में चला जाता है, लिहाजा तुम जरा इससे बच के रहो, ये जादूगर है। वो कहने लगा जादूगर कैसे हो सकता है, यानी वलीद ने इस पे भी इतराज किया कि देखो जादूगर कैसे हो सकता है, ये तो इसकी तो बातें बिल्कुल जादू वाली है नहीं, और इसका तो मामला दूसरा है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा, वलीद कहने लगा कि तुम जो भी कहोगे ना लोगों को इसकी सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन फिर बिलाखिर जो इत्तेफाक हुआ वो जादूगर पे हुआ, और आपको पता है कि इसमें बेस क्या बनाई, कहने लगे कि लोगों को ये बताएंगे कि इसकी बातों में आके औरतें इसके दीन पे आ रही हैं और घर टूट रहे हैं, यानी फैमिली सेटअप को उन्होंने बेस बनाया, बच्चे मुंह जोर हो रहे हैं, माँ बाप के आगे कभी बोले नहीं थे, अब इनकी जुबानें खुल गई हैं। आज भी ये जुमला मिलता है इस्लाम पे आने पे, ये शौरी इस्लाम पे आने पे, औरतों को तो हकूक मिल गया, अब इनको पता चल गया हमारे क्या हकूक हैं। बाज़ दफ़ा सामने माँ बाप आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा छोटे बड़े लोग आते हैं, लेकिन उन्होंने बहरहाल ये सारी बातें करके की, और कहते हैं कि वलीद जो शख्स था इसने बहुत सोचा क्या करें, और इसका अल्लाह ताला ने नक्शा सूरत मुद्दसिर में खींचा है जिसमें आता है कि वह इन्नहु फक्कर वक़द्दर फ़कुतिला कैफ़ा क़द्दर सुम्मा कुतिला कैफ़ा क़द्दर। अल्लाह ताला इसका एक मंजर पेश करते हैं कि देखो इसने अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ कोशिशें करने में कितना गौर व फिक्र किया कि इसने सोचा और अंदाज़ा किया, वो गारित हो इसने कैसा अंदाज़ा लगाया, फिर गारत हो इसने कैसा अंदाज़ा लगाया, फिर नज़र दौड़ाई, फिर पेशानी सुकेड़ी और मुंह बसोरा। एक एक उसका एक्शन कुरान पाक में नकल हो गया क्योंकि ये अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ हो रहा था। अल्लाह को अपने नबी की इज्जत इतनी प्यारी है कि उसके खिलाफ कोई दूसरा बात भी करे तो अल्लाह ताला उसका वो मंजर भी सामने पेश कर देते हैं। तो कहा कि ये कैसी बातें कर रहे थे। बहरहाल अब हुआ क्या कि वो रास्ते जहाँ से बाहर से लोग आते थे उन रास्तों में ये बड़े बड़े सरदार बैठ गए, जो वहाँ आता उसको मिलते, हाय बाय सलैक सलैक की, और साथ ही कहा कि ज़रा एक बात बतानी थी आपको, और ये बात है कि आजकल हमारे शहर में जादूगर आया हुआ है तो ज़रा आप उससे बच के रहिएगा। अब आप ज़रा सोचें, हमें ही कोई कह दे कि किसी आप जगह जा रहे हैं और वहाँ कोई जर्म्स फैले हुए हैं या वहाँ कोई ऐसा शख्स आया है जो बातों में उतार लेता है, तो कच्चे अकीदे के लोग तो फ़ौरन घबरा जाएंगे ना। लोग तो डर गए कि पता नहीं ये कैसा शख्स है। और ये बातें फैलाने में सबसे आगे आगे अबू लहब था, अल्लाह के नबी सल्लम का पीछा करता। हज के दिनों में लोगों के डेरों पे जाता, वहाँ बाज़ार लगते थे, ओकास का, मजना का, जुलमजाज का बाज़ार लगता था, टो में रहता कि अल्लाह के नबी कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह के नबी के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका था अपनी बात पेश करने का। और इससे पता चलता है, एक अमल की बात निकलती है कि कभी भी दीन का कोई काम करना हो या आपका कोई ऐसा अच्छा प्लान है तो ऐसी बड़ी गैदरिंग्स को फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौक़ों में बहुत तरह के लोग आए होते हैं, आपकी रीच रीच में वो लोग होते नहीं जो आते हैं। अल्लाह के नबी जाके कोई बात करते, कहते हैं जूँ ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे हट के आगे जाते तो अबू लहब पीछे जाके कहता, देखो देखो इसकी बात ना मानना, नाऊज़ु बिल्लाह, ये झूठा और बेदीन है, इसने बाप दादा का दीन छोड़ दिया। ये जुमला हर एक को सुनना पड़ता है। हक की पहचान ही क्या है कि ये जुमला ज़रूर सुनना पड़ता है कि तुमने अपने बाप दादा के तरीके को छोड़ दिया। जब ये जुमला मिल जाए ना किसी से सुनना पड़े तो अल्लाह का शुक्र करें कि अब ठीक है, क्योंकि ये एक अलामत होती है इस बात की, जिसको सब ठीक है ना वो कभी ठीक नहीं हुआ। और कहते हैं कि जिस दीन के सब बहुत सारे लोग होंगे ना तो आप समझ लें कि उसमें ज़रूर कोई कमी है, क्योंकि सब नहीं खुश होते। हक हमेशा मुर्रू मुर्रा कड़वा होता है, और हक के साथ लोगों का यही मामला होता है। अब उन्होंने अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ खुलेआम मुहाजरा ही कायम कर ली, कई तरीके उन्होंने किए, मसलन हंसी उड़ाते, ठट्ठा करते और मुसलमानों को बददिल करना चाहते थे, आपको पागल तक कहते थे। कुरान एक जगह आता है कि वक़ालु या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नक लमजनून। उर्दू तर्जमे में ज़रा शिद्दत महसूस करिए कि कोई आपके सामने बैठ के अगर आपको ये बात कहे तो कैसा लगे। उन कुफ्फार ने कहा, ए वो शख्स जिस पर कुरान नाजिल हुआ है, तू यकीनन पागल है। तू यानी जाहिर के सीगे हाजिर के मुंह पे आके अल्लाह के नबी को कहते हैं कि तू पागल है। कभी जादूगर कहते, कभी दीवाना कहते, कभी आपको आके आपकी महफिलों में ताड़ना शुरू करते, इस तरह देखते आंखें लगा लगा के कि आपको जैसे बिल्कुल एक अपनी जगह से हिलाने की कोशिश कर दें। फिर इसी तरह एक और ये सूरत करके देख ली, बात नहीं बनी, हंसी मजाक उड़ाया। सूरत मुतफ़िफ़ीन में आता है आखिरी आयतों में, इन्नल्लज़ीन अजरमू कानू मिनल्लज़ीन आमनू यदहकून, कि ये जो काफिर हैं ये ईमान वालों पे हंसते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, कल क़यामत के दिन मंजर पलट जाएगा। अल्लाह ताला ईमान वालों को जन्नतों से इन काफिरों का बुरा हशर दिखा के पूछेगा कि हल सुब्बि बल कुफ्फारु मा कानू यफ़लून, कि बताओ ये काफिरों को ठीक सज़ा मिल रही है। यानी बिलाल जिसको इतनी चोटें पड़ी, जब वो उमैया को जहन्नुम में जलता देखेंगे तो दिल को तस्कीन तो होती है ना। देखिए ईमान वाला कभी नहीं किसी का बुरा चाहता, ईमान वाले का दिल बड़ा साफ होता है, लेकिन ये इंसान की फितरत भी है कि जब जालिम को मजलूम के सामने सज़ा मिलती है ना तो उसके दिल को ये ज़रूर सुकून होता है कि मैं हक पे था और अल्लाह ने मेरा बदला मुझे दिलवा दिया। बहरहाल इसके साथ महाजराई का एक और तरीका उन्होंने किया कि अल्लाह के नबी की तालीमात पे शकूक व शुभात पैदा शुरू कर दिए। कहते थे ये क्या बातें करते हैं, असातीरुल अव्वलीन, ये पहलों की कहानी है, इसने बैठ के लिख लिए हैं और सुबह शाम तुम्हें पढ़ के सुनाता है। कभी कहते ये इफ्कुन इफ्तरा हो, ये झूठ है जो बांधा हुआ है, कभी कुछ कहते, कभी कहते इसको किसी बशर ने सिखाया है। मक्का में कुछ गुलाम रहते थे जो नसरानी थे, अल्लाह के नबी अपने मिजाज के नाते से बहुत नरम थे और गरीब परवर थे, आप उनके पास जाके बैठा करते थे। तो मक्का वालों ने ये बात फैला दी कि अल्लाह के नबी इन गुलामों से जाके बातें सीखते हैं, क्योंकि वो नसरानी थे। कुछ कुछ ना कुछ तो दीन उनके पास भी होगा, और वो बातें आके हमें बताते हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि आपकी बातों पे शको शुभात पैदा कर दिए। जब ये भी काम ना आई तो फिर एक तीसरा काम किया, और वो किया कि कोई अल्टरनेट लाए। अल्लाह के नबी जो कलाम पेश कर रहे थे वो लोगों के दिलों पे आता था, मोहब्बत से लोग सुनते, आप उस चीज़ को एब्जॉर्ब करते। इन्होंने कहा कोई ऐसा काम करो कि लोगों को अपनी तरफ खींचो। इस वक्त फिर एक शख्स था, नज़र बिन हारिस उसका नाम था, हीरा गया, मुल्क शाम का एक शहर है, वहाँ से किस्से कहानियाँ, बादशाहों के, रुस्तम इस्फंजार के किस्से कहानियाँ, फिक्शन लेके आया, और साथ ही साथ वो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें लौंडियाँ लेके आया जो गाने गाती थी। इसी के बारे में सूरत लुकमान की आयतों में एक आयत नाजिल हुई थी कि व मिनन नासि मैं यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, कि लोगों में से कोई एक ऐसा है कि जो लोगों को लहवल हदीस में खरीदता है, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो लहवल हदीस खरीदते हैं ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से बहका दें। तो किस्सा मुख्तसर के ये तरीका भी उन्होंने करके देखा। फिर इसी तरह हंसते, तालियां बजाते, सीटियां बजाते, जहां अल्लाह के नबी की कोई बात हो रही होती वहां जाके कुछ शोर कर देते ताकि उस बात का असर ख़त्म हो जाए। एक चौथा तरीका भी आपके साथ किया गया, और वो क्या था कि जब इन्होंने देखा कि ये पलटते ही नहीं, इनको क्या हो गया, ये नहीं सीख रहे कुछ नहीं, तो सौदेबाजियों पे आ गए, कुछ लो और कुछ दो। कहने लगे तुम कुछ हमें दो, कुछ हमसे ले लो, 1 साल तुम हमारे बुतों की इबादत कर लो और 1 साल हम तुम्हारे खुदा की इबादत कर लेंगे। उस पे फिर सूरत काफिरून नाजिल हुई थी कि कुल या युहल काफिरून लाबुदु मा ताबुदून, के काफिरो तुम्हें क्या हो गया, यानी हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, जिनकी तुम इबादत करते हो उसकी हम नहीं मानेंगे। लेकिन इनकी ये सारी कोशिशें बिल्कुल बेकार गईं, और बिल आखिर फिर उन्होंने जो काम किया वो क्या था कि जुल्म और सितम का एक बाजार गर्म कर दिया। जैसे किसी का बस नहीं चलता ना, तो फिर बस ना चलने वाली कैफियत थी कि उन्होंने बहुत तकलीफें देनी शुरू की। मसलन तकलीफ़ें, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनको वो ज़बरदस्ती इस्लाम से रोकते थे। मसलन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लें, किस तरीके से उनके साथ ये मामला होता था कि पत्थरों पे लिटा दिया जाता था। बीबी सुमैया, हज़रत यासिर, और इसी तरह के जो दूसरे लोग, जो ख़ास तौर पे जो गरीब तबका था उन पे बहुत जुल्म सितम हुआ। लेकिन एक बड़ी ही दिलचस्प बात है, इधर उधर बहुत जुल्म करते थे, इधर उधर बातें भी सुनाते थे, लेकिन जो ही अल्लाह के नबी सामने आते थे उनको कुछ नहीं कहते थे। यानी मक्का वालों ने जुल्म और सितम जब दूसरों के साथ किया, कभी आपने ये भी सुना कि अल्लाह के नबी को भी पत्थरों पर लिटा दिया गया हो? नहीं, कोई इक्का दुक्का वाक़यात ऐसे जज्बातियत के मिलते हैं कि आप सजदे में गए और आपके ऊपर ओझड़ी डाल दी ऊँट की, या एक औरत थी तो वो आपके ऊपर कूड़ा करकट फेंक देती थी, लेकिन मक्का वाले खुल के आपकी मुखालफत नहीं कर सके। ये सच्चे इस्लाम का रूप होता है। आज भी अगर हमारे ईमान और इस्लाम सच्चे हो जाए ना, तो आप कहते हैं कि काफिर आपको कुछ कहते हैं, आपको ये नुकसान देते हैं, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि वो तो आपको दे के रास्ता छोड़ दें। आज हम अपने इस्लाम की वजह से शर्मिंदा जब दिखते हैं ना, हम पहले ही अपने हाल हुलिए बदलने लगते हैं कि किसी कोने से मुसलमान ना लगें, तो फिर वो भी आपको ऐसे ट्रीट करेंगे। लेकिन जब आपके अंदर सच्चा ईमान आता है ना, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। इसमें वजह थी कि अल्लाह के नबी बड़े पर्सनैलिटी वाले थे, मुनफरद शख्सियत थी, बावकार थे। फिर अल्लाह के नबी ने कभी किसी के साथ कोई बुराई भी नहीं की थी, और सबसे बड़ी बात साथ एक ये भी थी कि अबू तालिब से डरते थे। उनको पता था कि चचा इसका जो है वो पीछे इसके और अबू तालिब की हैसियत सरदार की थी, और अल्लाह ताला ने अबू तालिब को जो इस्लाम नहीं दिया ना, उसके पीछे ये हिकमत भी थी, क्योंकि अगर अबू तालिब भी मुसलमान हो जाते तो मक्का के हालात ही फ़र्क हो जाते, फिर वो कहानी बिल्कुल दूसरी तरह की हो जाती। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी को तकलीफ़ें किस तरह की मिली, जज्बाती टॉर्चर मिले। मसलन क्या कि बाज़ रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह के नबी कोहे सफ़ा पे खड़े होकर पैगाम दे रहे थे तो किसी ने आपको मारने के लिए पत्थर उठाया। इसी तरह अबू लहब ने जो एक इंतकाम लिया वो बड़ा जज्बाती नौयत का था, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी अपनी बेटियां हैं। और वो क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले अबू लहब के दो बेटे, एक का नाम उतबा था और एक का नाम उतैबा था। इन दोनों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों के निकाह हो चुके थे। शायद बहुत थोड़े लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन आपकी जो दो बेटियां हज़रत रुकैया और उम्मे कुलसूम जो थी, इन दोनों की शादियां अबू लहब के बेटों से हो चुकी थी। रुख्सती नहीं हुई होगी, निकाह होगा क्योंकि रिश्तेदारी थी। लेकिन जब अल्लाह के नबी नबी बने तो आपकी वो बेटियां मुसलमान हो गई, उन्होंने अपने बाप पर ईमान लाई। अब इस जुर्म में अबू लहब ने अपने बेटों को मजबूर करके अल्लाह के नबी की बेटियों को तलाक दिलवाई। कितना नाजुक मरहला होता है। सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग हम हो जाते हैं या अपने रिश्तों के वक्त पे या अपने बच्चों के रिश्तों के वक्त में। आज भी दीन की तरफ आए ना तो रिश्तों का चक्कर ज़रूर चलता है। अब रिश्ते नहीं आएंगे, अब शादी कौन करेगा? दीन आता है तो घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, और बाज़ दफ़ा इतने होते हैं कि घर में बिगाड़ पैदा होता है। तो लोग कहते हैं अब कौन बिगाड़े, जैसे ये हैं वैसे ही बन के बड़े रहो। नहीं, अल्लाह के नबी ने कुर्बानी दी, बेटियां घर आईं, लेकिन आपको पता है कि अल्लाह ने उन दोनों को क्या दिया? ये वही दोनों बेटियां हैं जो यके बदीगरे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजियत में आई। अल्लाह ताला इस तरह प्यारे बदले दे देता है। जो अल्लाह के दीन के लिए अपनी ज़िंदगी में कोई कमी लाता है, अल्लाह उसको पीछे नहीं छोड़ता। देखिए कि आज भी कितने घराने टूटते हैं, कई वजूहत उसकी होंगी दुनियावी, लेकिन दीन की बुनियाद पे अगर कहीं घर में ऊंच ऊंच नीच थोड़ी बहुत हो जाती है तो उसको बर्दाश्त कर लीजिए। फिर इतने में क्या हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेटा अब्दुल्ला था, उसका इंतकाल हो गया। अबू लहब इतना खुश हुआ, दौड़ता हुआ अपने साथियों के पास गया और खुशखबरी सुनाई कि देखो देखो मोहम्मद की नस्ल कट गई, नस्ल बरीदा हो गए। इस पे अल्लाह ताला ने सूरत नाजिल कर दी कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। कि ये आपके बेटे के फौत होने पे खुशियां मना रहे हैं कि आपकी नस्ल कटी, नस्लें तो इनकी कटेंगी, आपका नाम तो हौज़े कौसर तक जाएगा, लोगों की औलादें तो दुनिया में साथ छोड़ देंगी, आपका तो हौज़े कौसर पे जो चश्मा होगा, जिसने अगर एक दफ़ा पानी पी लिया वहां से तो किसी को फिर प्यास नहीं लगेगी। इससे फिर अमल की बात भी निकलती है। और वो क्या कि बाज़ दफ़ा मादी चीज़ों से भी वो खुशियाँ नहीं मिलती जो रूहानी चीज़ों से मिलने लगती है। औलाद की तलब एक फितरी तलब है, लेकिन बाज़ दफ़ा औलाद वालों को वो खुशी नहीं मिलती जो अल्लाह ताला अपने काम के साथ लोगों को खुशी अता कर देता है। फिर दूसरी चीज़, इससे हमने पूरे हिस्से से जो अमल की सीखी कि दीन के रास्ते में आजमाइशें तो आएंगी, इससे घबरा के दीन नहीं छोड़ना। छोड़नी क्या है? मुखालफत छोड़नी है, इख्तलाफ ना हो, कहीं ना कहीं ऐसी बातें ना हों कि जिसकी वजह से दीन पे कोई हर्फ आने लगे, यानी जिसको आप कह लें कि आमना सामना होने, टकराव से बचना है। इस्लाम टकराव की सियासत पसंद नहीं करता। चलें ठीक है, यहाँ से फिर आगे बाद में करेंगे, ठीक है। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।